आत्मज्ञान से अब भगवान दूसरे अध्याय में धर्म ज्ञान अर्जुन को सुनाना प्रारंभ किए हैं। और पिछले बुधवार को हमने इस धर्म ज्ञान का पहला श्लोक लिया, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, जिसमें भगवान अब अर्जुन का संकोच दूर कर रहे हैं। अब तक अर्जुन शोक अवस्था में थे, भगवान अर्जुन का शोक दूर कर रहे थे। और जो भगवान ने अर्जुन के हाव भाव को देखा कि अब अर्जुन आत्मज्ञान में तो स्थित हो चुके हैं, परंतु जो एक उनके स्वधर्म की परिभाषा वो अब तक समझे नहीं है। और स्वधर्म की हमने परिभाषा ली, एक है शारीरिक स्तर पर और एक है आत्मीय स्तर पर। तो हालांकि अब तक भगवान ने अर्जुन को जो आत्मज्ञान दिया उसमें केवल यही बताया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, अब तक ये भगवान ने अर्जुन को सिद्ध नहीं करवा दिया कि वो जो तुम्हारी व्यष्टि आत्मा वो मेरा एक अंश है। आगे भगवद गीता में भगवान उसे भी सिद्ध करेंगे, परंतु अर्जुन आत्मज्ञान में स्थित होने के पश्चात अब तक संकोच इसलिए कर रहे थे कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि यदि ये भी केवल आत्मा है और ये शरीर नहीं है तो फिर उस कारण को लेते हुए या उस दृष्टिकोण से भी मुझे क्यों इन्हें मारना चाहिए, क्योंकि शरीर तो मरा ही हुआ है ना। और फिर यदि शरीर मरा हुआ है तो फिर मैं मरे हुए शरीर को क्यों मारूं? तो अब भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा स्वधर्म यह है कि केवल तुम अपने उद्धार की न सोचो, बल्कि ये सारे जो कौरव एकत्रित हुए हैं, जितने सारे सैनिक एकत्रित हुए हैं, धर्म की स्थापना यहां पर होने जाने वाली है और मैं इसीलिए अवतरित हुआ हूं और तुम्हें माध्यम बनाना चाहता हूं। तो भगवान इसलिए पिछले श्लोक से प्रारंभ किए कि अब अर्जुन मैं तुम्हारा स्वधर्म क्या है ये तुम्हें समझाऊंगा। और स्वधर्म की व्याख्या करने के पश्चात या उसकी शुरुआत करने के पश्चात आज का जो श्लोक है इसमें उसी स्वधर्म से संबंधित अर्जुन को क्या लाभ होंगे ये बता रहे हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिद्रिशम। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिद्रिशम। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिद्रिशम। यहां पर भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि जो कोई एकत्रित इस रणभूमि पर हुआ है वो सब क्षत्रिय हैं। पार्थ, तुम प्रथा के पुत्र, तुम भी एक क्षत्रिय और जितने यहां पर एकत्रित हुए हैं वो सारे क्षत्रिय, इसलिए इन सारे क्षत्रियों के लिए इस रणभूमि पर ये जो अवसर उन्हें प्रदान किया गया है, कौन सा अवसर? धर्म युद्ध करने का अवसर। ये धर्म युद्ध करने का जो अवसर सभी क्षत्रियों को प्रदान किया है, किसने किया है? भगवान ये बता रहे हैं, मैंने किया है। तो यदृच्छया, कि मेरी इच्छा से ये जो धर्म युद्ध हो रहा है, ये मेरी इच्छा से, या यहां पर यदृच्छया का एक और अर्थ है, जो स्वाभाविक रूप से धर्म युद्ध ये हो रहा है, ये कृत्रिम नहीं है, इट इज नॉट आर्टिफिशियल, दिस धर्म युद्ध इज नेचुरल, एंड फॉर अ क्षत्रिय टू फाइट अ नेचुरल वॉर इज समथिंग विच इज हिज ड्यूटी। तो भगवान कह रहे हैं कि होगा क्या, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, कि जो कोई इस रणभूमि में आ चुका है, चाहे वो जीते या हारे, चाहे वो जिए या मरे, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार उसके लिए अपावृतम खुले हुए, वाइड ओपन द गेट्स ऑफ हेवन। इसलिए सुखी नह, जो सुख एक क्षत्रिय को तुम प्रदान कर पाओगे हे अर्जुन, वो क्या होगा? ये युद्ध लड़कर एक क्षत्रिय को यही सुख मिलता है, यही उसके लिए सुख है। जैसे एक ब्राह्मण, एक जो ब्राह्मण होता है, यज्ञ अनुष्ठान, मंत्रोच्चारण, अर्च विग्रह की पूजा, इन सब में एक ब्राह्मण को सुख मिलता है, और एक क्षत्रिय को सुख मिलता है युद्ध, और जब वो रक्त को देखता है, बताया गया है कि जब क्षत्रिय वो रक्त को देखता है तो उसके अंदर उसका रक्त ज्यादा स्पीड में दौड़ने लगता है, अंदर उसका ब्लड सर्कुलेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है अंदर। एक वैश्य जब पैसों को देखता है या व्यापार के अवसर को देखता है तो वो उसका एक्सटेसी। तो इस प्रकार से भगवान अब बता रहे हैं कि इस श्लोक में, और इस श्लोक से पिछले श्लोक का संबंध भी हम देखेंगे। तो आज के चर्चा के विषय हमारे ये रहेंगे, पिछले श्लोक से क्या संबंध है आज के श्लोक का? धर्म युद्ध अपने आप प्राप्त हुआ है, भगवान बोल रहे हैं, स्वाभाविक है। यह धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, स्वर्ग प्राप्ति सबसे बड़ा कल्याण नहीं है, यह भी आज हम समझेंगे। ऐसा धर्म युद्ध भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है, और अंततः श्रील प्रभुपाद की व्याख्या। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया स्वधर्म की क्या व्याख्या है, और आज के श्लोक में स्वधर्म पालन करने का फल क्या है। देखिए, हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, उस धार्मिक कार्य के पीछे एक फल छिपा होता है, और उस कार्य को करने से पहले हमें वो फल दिख जाता है, है ना? वो जो फल है वो कार्य करने से पहले दिख जाता है। अच्छा, यदि हम धार्मिक कार्य की चर्चा थोड़ी देर बाद करें, एक हमारे जो साधारण दिनचर्या है उसमें भी यदि हम देखें, तो हम जो भी क्रिया या कर्म करते हैं उसके पीछे हम पहले फल को देख लेते हैं, हालांकि मिला नहीं है अब तक, लेकिन दिख जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, और तब जाकर हम उस क्रिया को करते हैं। जैसे कि कोई बाजार जाकर सामान खरीद रहा है, सब्जियां खरीद रहा है, दाल चावल खरीद रहा है, तो सब्जियां खरीदी, दाल चावल खरीदा, घी खरीदे, मसाले खरीदे, क्या दिख रहा है उसे अभी? खिचड़ी, है ना? वो सब जो उसका फल क्या होने वाला है, ये सब मैं जो खरीद रहा हूं इसके पीछे क्या क्रिया होगी, उसका क्या फल हो। तो जैसे कोई आम का पेड़ लगाता है, तो अभी वहां पर फल नहीं, वो एक पौधा है या कोई उसका बीज है केवल, लेकिन उसमें वो देख रहा है कि कितने आम इसमें आएंगे, कितनी आमदनी होगी, कितना आमरस निकलेगा, कितना मैं लूंगा, कितना बांटूंगा, कितना पैसे कमाऊंगा, जो भी कुछ। तो उस कर्म के पीछे उसे फल दिखता है। तो मानो अब अर्जुन इस स्थिति में नहीं है, अब तक कर्मण्येवाधिकारस्ते वो श्लोक नहीं कहा, तो इसलिए भगवान ये देख रहे हैं कि अर्जुन हो सकता है कि स्वधर्म के विषय में सुनने के पश्चात पूछे तो भाई बताओ कि क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि फल क्या है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखी न क्षत्रिय। तो दो चीज बता रहे हैं कि सुख और भाग्य, क्या चाहते हैं लोग, यही चाहते हैं ना। क्या लिखते हैं घरों के आगे दिवाली के समय ज्यादातर, शुभ लाभ, कि कुछ लाभ हो, लभन्ते, वो श्लोक में हमने पढ़ा लभन्ते, कि लाभ हो और सुखी ना, जो सुख मिले और फिर हमारा भाग्य उजागर हो। तो मानो भगवान यहां पर अब अर्जुन को प्रलोभन दे रहे हैं, एक प्रलोभन दे रहे हैं, और केवल अर्जुन के से ही संबंधित नहीं, जितने सारे क्षत्रिय वहां पर एकत्रित हैं उन सब से संबंधित उनके लिए शुभ और लाभ क्या है, यह भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम चिंता जिनकी कर रहे हो ना, उनका शुभ और उनका लाभ इस युद्ध में ही छिपा हुआ है। इस धर्म युद्ध में गांडी उठाकर तुम जब इनको मारोगे ना, इनके अंदर इनका शुभ और इनका लाभ छिपा हुआ है, ये भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं। तो अब यह जो धर्म युद्ध जिसकी चर्चा भगवान ने की, तो ये प्रश्न उठ सकता है, मानो अर्जुन ये प्रश्न पूछे भगवान से कि अपने आप कैसे प्राप्त हुआ है। भगवान कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम, कि ये मेरी इच्छा और स्वाभाविक रूप से ये धर्म युद्ध सबको प्राप्त हुआ, और विशेष रूप से अर्जुन तुम्हें प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम स्थापना करने वाले हो। तो यदि हम देखें इतिहास, महाभारत में पांडवों का इतिहास देखें, तो क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, लाक्षाग्रह में जलाकर मारने की साजिश, जुआ खेलते समय शकुनी का कापट्य, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान, फिर 13 वर्ष का वनवास, और अंततः भगवान श्री कृष्ण साक्षात जब शांतिदूत बनकर गए उनका अपमान। जब ये निर्णय हो रहा था कि शांतिदूत बनकर कौन जाएगा, तो अर्जुन वो बलराम जी से पूछे कि आप जाइए शांतिदूत बनकर। तो उस समय बलराम जी ने अर्जुन से कहा, नहीं, मैं शांतिदूत बनकर जाना तो दूर, वो तो ये कह रहे थे युद्ध तो होने ही वाला है, शांति वांति तो छोड़ दो तुम, उस युद्ध में भी मैं नहीं रहने वाला, ये युद्ध होने ही वाला है। और बलराम जी अर्जुन को कह रहे थे कि यदि मैं वहां पर शांतिदूत बनकर जाऊंगा तो वो तो मेरी एक बात मानने नहीं वाले, वो दुर्योधन एक बात मानने नहीं वाला, तो मैं तो वहां पर ही सबको खत्म कर दूंगा, मतलब शॉर्टकट, कुरुक्षेत्र वगैरह का इतना सब सेटअप होगा ही नहीं, वहीं पे मैं सबको खत्म करने वाला हूं। इससे ज्यादा ये कारण बलराम जी शांति दूत बनकर नहीं गए, और बलराम जी ने कहा है ये कृष्ण को भेजो, ये बहुत चतुर है, ये सब जानते हैं पैंतरे, तो ये इनको भेजो। तो दूसरा कारण बलराम जी ने अर्जुन को ये दिया कि भाई मुझे भेजोगे तो मैं तो वहीं पे सबको खत्म कर दूंगा, तो भाई तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? किसका अवतार? अर्जुन का, नर नारायण। तो नारायण तो साक्षात कृष्ण और नर अर्जुन, तो ये तुम्हारा अवतार हुआ है इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो उस समय शांति दूत के समय बलराम जी ने अर्जुन को बोल दिया था कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय, तुम इसलिए कुंती के पुत्र पैदा हुए हो कि तुम्हें ये धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए कृष्ण को जाने दो शांति दूत बनकर। तो भगवान श्री कृष्ण फिर गए। तो ये देखिए कितने सारे कारण थे युद्ध छिड़ जाने के, कितने सारे पांडवों के पास कितने कारण थे युद्ध करने के, अनगिनत कारण युद्ध करने के। तो भगवान अर्जुन को ये सब याद दिला रहे हैं कि इतने अनगिनत कारण होने के बावजूद अर्जुन तुम पांडवों ने युद्ध नहीं, उसका प्रस्ताव नहीं रखा, तब फिर तुम क्यों चिंता करते हो? ये युद्ध कौन चाह रहा है? तुम नहीं चाह रहे, वो जो सामने खड़े हैं ना, उन्होंने अपने करतूतों से ये दर्शा दिया है कि हम ये युद्ध चाहते हैं, तो तुम क्यों चिंता करते हो? Why do you worry when they want this war? So we are simply fulfilling their desire. उनकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है। देखिए इतना सब कुछ, पहले लाक्षाग्रह में, उससे भी पहले बचपन में विष देकर, खैर उस समय तो कोई संभावना नहीं थी युद्ध की, लेकिन अब बड़े हो चुके थे लाक्षाग्रह का जो कांड हुआ और बाकी सारे जितने सब कुछ हुए, उन सब से वो क्या आह्वान दे रहे थे कि लड़ो लड़ो मुझसे लड़ो, लेकिन तुम पांडव इतने सज्जन, तुम लोगों ने एक बार भी ये युद्ध का प्रस्ताव नहीं रखा। वो जानते थे जब युधिष्ठिर महाराज को द्यूत क्रीड़ा के लिए निमंत्रित किया गया, तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये जो शकुनी है ये वहां पर पांसे फेंकने वाला है और ये एक नंबर का कपटी। और जब वहां पर उसने अपना कापट्य भी दिखा दिया, वो देख लिया उन्होंने, फिर भी द्रौपदी, सोचिए द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन नग्न करने वाला था। अब इससे ज्यादा क्या किसी को कारण देना चाहिए युद्ध करने के लिए? और ठीक है, उसके पश्चात फिर वापस से द्यूत क्रीड़ा खेली गई और उसमें फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसके पश्चात तो उनको राज्य मिलना चाहिए था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से युधिष्ठिर महाराज ज्येष्ठ पुत्र, और दुर्योधन वो 12 वर्ष भी उसने वो चैन से नहीं बैठा, वो दुर्योधन वो 12 वर्ष भी छटपटा रहा था, कभी दुर्वास मुनि को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है कि पता लगाए, अज्ञातवास में जब थे पता लगाने के लिए कि कहां है, ताकि फिर से और 12 वर्ष। तो कितने उसने प्रयास किए इनको दुख देने के, कठिनाई परेशानी देने के, और फिर अंततः जब भगवान ने क्या प्रस्ताव रखा, 5 गांव। इतने बड़े बड़े ये क्षत्रिय अर्जुन युधिष्ठिर भीम, 5 गांव दो इनको, 5 गांव नहीं, सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा इन्हें, ये दुर्योधन। तो भगवान ने कहा तो फिर युद्ध, कहा जो भी तो करना करो। अक्सर लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये एक और लांछन लगाते हैं कि ये कैसे भगवान जिनको आप पूछते हो, जिन्होंने युद्ध करवाया, कुरु पांडवों में युद्ध मचायो, ये कौन से भगवान को आप पूछते हो। तो ये सारे यदि कारण हम देखें और अंततः इन सब को सहन करते हुए भगवान शांति का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, दुर्योधन अब भी नहीं चाहिए हस्तिनापुर, 5 गांव दे दे। तो फिर युद्ध किसने उकसाया? क्या भगवान श्री कृष्ण ने उकसाया या दुर्योधन एंड पार्टी? तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ग्लानि क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू फीलिंग गिल्टी? ये स्वाभाविक रूप से धर्म युद्ध तुम्हारे भाग्य में आया है। एक क्षत्रिय के भाग्य में धर्म युद्ध आना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो पहली पंक्ति है आज के श्लोक की, यदृच्छया चोपपन्नम, कि अर्जुन स्वाभाविक रूप से ये आया है, इसे स्वीकार करो स्वाभाविक रूप से, कृत्रिम रूप से इसका तिरस्कार मत करो और इसकी तिलांजलि मत दो कृत्रिम रूप से। तो अब भगवान जब अर्जुन को ये प्रलोभन दिए और स्वधर्म पालन करने का फल क्या है कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यह धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। तो भगवान अब अचानक स्वर्ग की बात क्यों करने लगे? देखिए, भगवान एक एक श्लोक जो अर्जुन को अब सुना रहे हैं, भगवान ने इतना अच्छा श्रवण किया है और वो एक एक अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन की जो शंकाएं, उसको याद करते हुए भगवान अब उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन ने पहले अध्याय में 83वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि क्या कहा था, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वास, कि हे जनार्दन, ये जो मेरे स्वजनों को मैं अपने ही हाथों से मारूंगा तो नरके नियतम वासम, नरक मुझे भोगना पड़ेगा। तो अर्जुन बोल रहे थे नरक जाने की बात, और यहां आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं स्वर्ग जाने की बात। देखिए कॉन्ट्रास्ट देखिए, अर्जुन बोल रहे हैं प्रथम अध्याय में इस श्लोक में कि मारने से मैं जाऊंगा नरक, भगवान कहते हैं मारने से जाओगे स्वर्ग। इसे कहते हैं जीव और भगवान के दृष्टिकोण में अंतर। व्हाट वी कंसीडर एज रिलीजन माइट बी कंसीडर्ड एज इरिलीजन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए आजकल जैसे लोग मनगढ़ंत अपना ही धर्म चालू कर देते हैं कि मेरे अनुसार इसे कहते हैं दान दक्षिणा या इसे कहते हैं धर्म, कि अपना जीवन जियो, बस दूसरों के जीवन में दखलंदाजी मत करो। जैसे एक फिलोसोफर, उन्होंने एक अपनी ही फिलॉसफी लिखी कि व्हाई कांट देयर बी अ पीसफुल लस्टी सोसाइटी, कि एक ऐसा समाज जो शांति हो जिसके अंदर, और लोग अपने अपनी काम वासनाओं को पूरा करते रहे, है ना। देखो उसका प्रपोजल देखो, मतलब ये पीसफुल लस्टी सोसाइटी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है कि जब दो शब्द आप बोलो, जैसे एक गरम कोल्ड ड्रिंक लाना, ऐसे कोई बोले एक गरम कोल्ड ड्रिंक लाना, ये ऑपोजिट हो गया ना। अरे भाई तुम कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हो और बोलते हो गरम लाना, फिर ऐसे कैसे हो सकता। तो ये इसे बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। मुझे एक ने ईमेल भेजा था, ये अलग अलग ऑक्सीमोरॉन क्या होते हैं, जैसे लिटिल क्राउड, देयर वाज अ लिटिल क्राउड, लिटिल क्राउड, तो लास्ट का था हैप्पीली मैरिड। तो वैसे यहां पर अब अर्जुन का प्रस्ताव था कि मारने से मैं जाऊंगा नरक, और भगवान कहते हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम, सुखी न क्षत्रिय, सारे क्षत्रिय सुखी हो जाएंगे, उनका शुभ और लाभ, चलो मनाओ दिवाली। तो ये एक पहला कारण। अब भगवान कहते हैं स्वर्ग जाने के द्वार पर न कोई रोका जाएगा न टोका जाएगा, क्योंकि जो स्वर्ग का द्वार है उसमें ऐसे ही कोई एंट्री नहीं कर सकता, कोई घूस वूस देके एंट्री नहीं कर सकता वहां पर, कोई ब्राइबरी वहां पर नहीं चलती। और स्वर्ग का जो द्वार है दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, बताया गया दिखने में बहुत सुंदर है स्वर्ग का द्वार, लेकिन उसमें उसके अंदर एंट्री करना बहुत कठिन। और इतना पक्का वो द्वार होता है, और वहां के जो भी जो द्वारपाल होते हैं वो स्वर्ग के द्वारपाल भी बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, कि एक चींटी भी, बाकी तो छोड़ दीजिए, एक चींटी भी वो द्वार से अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर जाने का वीजा क्या है, स्वर्ग में जाने का वीजा क्या है, पुण्य, पुण्य कर्म, और वो पुण्य कर्म इस पृथ्वी पर अर्जित करने होते हैं। जैसे किसी को अमेरिका जाना है तो वीजा चाहिए ना, तो वीजा कहां, वो अमेरिका जाने के बाद तो नहीं बोलेगा दो वीजा, नहीं इधर भारत में ही लेना पड़ता है उसे, यहां पर वीजा लेना पड़ता है, फिर यहां पे उसको सब कुछ स्टैंपिंग करके अनुमति दी जाती है, अब तुम जा सकते हो। तो वैसे ही स्वर्ग, ये ऐसा नहीं लोग बोल देते ना स्वर्गवास हो गया उनका, अच्छा थोड़े कर्म तो दिखाओ, उनके रजिस्टर दिखाओ क्या क्या कर्म किए, स्वर्गवास हो गया, इतना आसान नहीं है स्वर्ग में पहुंचना, मतलब पूरे ना जीवन भर तो शराबी कबाबी जुआरी सब कुछ था, और फिर मरने के बाद महाजय का स्वर्गवास हो गया। तो यदि श्रीमान चित्रगुप्त यमराज जी इनसे पूछा जाए तो वो बताएंगे कि असली गति कहां है, फिर वो पता भी नहीं करना चाहेंगे कि वो कहां गए, तो बताना भी नहीं चाहेंगे कि वो कहां गए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो स्वर्ग में प्रवेश करना इतना दुर्लभ है, उस वो एक क्रिया जो इतनी दुर्लभ है स्वर्ग के द्वार से, यहां पर न तो कोई द्वारपाल होगा टोकने के लिए, न कोई द्वार होगा रोकने के लिए, तो रोक टोक बिल्कुल नहीं, वाइड ओपन खुला रहेगा। क्यों खुला रहेगा, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं इतने सारे सैनिकों को एक साथ एंट्री करना है ना, तो थोड़ी बार बार बंद करेंगे चालू करेंगे द्वार, तो द्वार खुला रखेंगे, क्योंकि उनको उनको जब मैसेज मिलेगा एसएमएस आएगा कि कितने सारे जो योद्धा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब सारे मारे गए, तो भाई वो द्वार खोल के रखो, इनकी तो एंट्री निश्चित है अंदर स्वर्ग में। तो भगवान ये बता रहे हैं कि स्वर्ग का द्वार किस प्रकार से बिना रोक टोक के खुला होगा। अब यदि हम कुछ उदाहरण देखें कि मानो अर्जुन पूछे कि ठीक है आप बोल रहे हो कि मैं इनको मारूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं हुई तो वहां पे रोक दिया तो कुछ भी हो सकता है, कोई फाइल्स यहां वहां मिसप्लेस हो गई, वो उनको लगा कि भाई तो तुमने पाप किया, यहाँ गलत एड्रेस पे आ गए, तो यमराज जी को फोन लगाएंगे ये आपका कैंडिडेट है। तो यदि हम कुछ उदाहरण लें, या अर्जुन ये उदाहरण भगवान को बोल रहे हैं, जैसे कि त्रिशंकु, बहुत फेमस उदाहरण है इनका, बोला जाता है कि त्रिशंकु की तरह मत लटके रहो, बोलते ना, सुना आपने, मैं त्रिशंकु की तरह लटका हुआ था, वो बोलते धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो एक शास्त्रिक मुहावरा त्रिशंकु का है। तो ये जो त्रिशंकु, ये एक बहुत बड़े राजा थे, ये प्रभु श्री राम के वंश में 33 पीढ़ी पूर्व, प्रभु श्री राम के 33 पीढ़ी पूर्व महाराज त्रिशंकु थे। और इन्हें स्वर्ग जाना था, इनकी इच्छा हुई इसी इसी देह से वो स्वर्ग जाना चाहते, विश्वामित्र मुनि की शरण उन्होंने ग्रहण किया। और विश्वामित्र मुनि उस समय वो सारे जो अप्सराएं इंद्र ने भेजी थी, तो विश्वामित्र मुनि बहुत इंद्र से खुन्नस में थे, तो उन्होंने त्रिशंकु महाराज जो स्वदेह जाना चाहते थे, तो विश्वामित्र मुनि ने कहा मैं भेजूंगा मैं भेजूंगा। तो उन्होंने अपनी शक्ति, अपने योग बल से, तपोबल से महाराज त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर डायरेक्ट किया, चलो। तो वो जा रहे स्वर्ग की ओर, इंद्र ने वहां से देख लिया अनऑथराइज एंट्री आ रहा है, ट्रेसपासर्स प्रोसिक्यूटेड। तो महाराज इंद्र, देवराज इंद्र, वो वहां से अपनी शक्ति से फिर उनको फेंक दिए। तो वो ऑलमोस्ट स्वर्ग पहुंचने वाले थे, वहां से फिर धक्के मार के नीचे फेंका गए। तो यहां से विश्वामित्र मुनि ने नीचे देखा कि नीचे आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं अरे वो ऊपर से फेंक दिया मुझे, पहुंच ही नहीं पाए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपने तपोबल से फिर उनको यहां से यू टर्न, तो यहां से यू टर्न, वहां से यू टर्न, और वो अब उनका सर नीचे पैर ऊपर ऐसे लटके बीच में। तो दोनों के शक्तियों से, इंद्र और विश्वामित्र की मुनि के शक्ति से वो बीच में लटके हुए, इसलिए बहुत फेमस है महाराज त्रिशंकु बीच में लटके हुए। कई बार बंबई के लोकल ट्रेन में भी बहुत से त्रिशंकु दिखते हैं ऐसे, ना तो वो अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, ऐसे लटके त्रिशंकु की तरह। तो अर्जुन ये त्रिशंकु का उदाहरण याद कर रहे हैं कि उनकी क्या हालत हुई थी। और इसके पश्चात उदाहरण महाराज नृग का है कि ठीक है, त्रिशंकु महाराज जो थे वो तो बिना पुण्य के ऐसे ही जाना चाहते थे, लेकिन महाराज नृग, इन्होंने ऐसे ऐसे पुण्य किए थे, इतने गायों को दान दिया था, सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों गायों को दान दिया, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। श्रीमद् भागवत में इनकी कथा है, एक गड़बड़ हो गया कि इन्होंने एक ब्राह्मण को जो दान दिया वो गाय वापस इनके गौशाला में आ गई, और फिर वो दान दी हुई गाय जो वापस आ गई इन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब वो दोनों ब्राह्मण आए, मेरी गाय जो आपने मुझे दान दी वो गाय वापस आपके यहां पे कहां गई, पता नहीं, तो पता लगाया तो वहां पर गई। वो ब्राह्मण ने कहा मैं तो नहीं दूंगा, आपने मुझे दान दे दी। तो अब महाराज नृग इनको कह रहे मैं आपको और सैकड़ों गाय, नहीं मुझे वही गाय चाहिए, वही गाय और कोई। वो भी सोचे कि ये भी अजीब है ब्राह्मण, एक तो दान दिया ऊपर से इतने नकचड़े होते हैं। तो अब श्राप दे दिया महाराज नृग को, श्राप दे दिया। अब ये तो पूरे अपना बैग वैग पैक करके स्वर्ग की तैयारी में थे कि इतना सब दान दक्षिणा दिया है तो स्वर्ग में तो निश्चित ही वहां पे सीट रिजर्व्ड है मेरा। तो यहां पे तो श्राप मिल गया, छिपकली बन गए। तो सोचिए कहां स्वर्ग की ये अपेक्षा में सब कुछ तैयारी किए हुए अब ये एक छिपकली बन गए। तो ये उदाहरण अब अर्जुन याद कर रहे हैं कि इतना सब पुण्य किया, क्या मिला? अंततः छिपकली का देह। और यहां तक कि चार कुमारगण वो वैकुंठ धाम जाने का प्रयास किए, उन्हें रोक दिया गया। जय और विजय ने चार कुमारों को, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र, इन चार कुमारों को जय विजय ने वैकुंठ धाम से अंदर जाने से, प्रवेश में बाहर ही रोक दिया। तो अर्जुन इनका भी उदाहरण याद कर रहे हैं। और अंततः श्रीमान रावण, कि रावण इसने भी यही प्रयास किया। और देखिए रावण का प्रयास क्या था, वो सीढ़ी बनाना चाहता था कि मैं सीढ़ी बनाऊंगा कहां से, लंका से स्वर्ग। सोचिए कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी उसने लगाई होगी कि लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी। आजकल के वैज्ञानिकों को पूछे तो वो बोलेंगे कि पागल था, लिफ्ट लगाना चाहिए था, सीढ़ी लगा रहा, इतना सीढ़ी चढ़ चढ़ के कौन जाएगा, इतना सीढ़ी चढ़ चढ़ के लास्ट तक पहुंचेगा, उधर ही मर के अधमरा होकर वापस गिर जाएगा। वैसे ही होता है स्वर्ग में, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंत। तो रावण कृत्रिम रूप से स्वर्ग में जाना चाहता था, उसके प्रयास विफल हुए। तो ये सब उदाहरण अर्जुन याद कर रहे हैं जब भगवान स्वर्ग द्वारम अपावृतम कह रहे हैं। लेकिन स्वर्ग एवं वैकुंठ जाने में बाधा नहीं भी हुई है, जैसे कि महाराज मुनि भृगु इनकी, कि जब सारे ऋषिगण एकत्रित हुए और उन्होंने उनकी सभा में ये प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से सर्वोच्च कौन है, तो भृगु मुनि इनको भेजा गया, हम ये कथा सुने हैं। पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर और ब्रह्मा जी का जो लोक है वो स्वर्ग लोक से भी ऊपर है, तो उनका पहला ही एंट्री स्वर्ग लोक से ऊपर की एंट्री थी उनकी। स्वर्ग लोक में सबसे ऊंचा है ब्रह्मलोक, तो वो ब्रह्मलोक पहुंचे, उसके ऊपर शिवलोक, और फिर वैकुंठ लोक में भी जहां भगवान श्री नारायण अपने अंतःपुर में लक्ष्मी देवी के गोद में अपना सिर रख के सोए हुए लेटे थे। तो सोचिए भृगु मुनि को ऐसा वीजा मिला हुआ था कि वो वैकुंठ धाम में भगवान श्री नारायण के बेडरूम में पहुंचे सीधे अंदर, और वो भी छाती पे लात मारी जाते ही। तो सोचिए उनका कितना पुण्य और कितनी उनका अध्यात्म उन्होंने अर्जित किया था कि वो प्राप्त करने के लिए। और फिर भगवान कहे तुम स्वयं तो गए थे कि नहीं, अर्जुन गए थे ना, उसी देह में अर्जुन गए थे जब इस कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अस्त्र शस्त्र अर्जित करने के लिए अर्जुन स्वर्ग में जब पहुंचे। देखिए लोग जाते हैं ना हायर डिग्रीज के लिए, एमएस करने के लिए यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, यहां वहां जाते हैं, तो अर्जुन हायर डिग्री, मतलब अर्जुन की हायर डिग्री क्या है, अस्त्र शस्त्र हासिल करना, तो वो उन अस्त्र शस्त्रों को हासिल करने के लिए वो इसी देह में, मनुष्य देह में वो स्वर्ग पहुंचे। और अर्जुन इस मनुष्य देह में स्वर्ग पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन अर्जुन इस मनुष्य देह में ही स्वर्ग पहुंचे। और इतना ही नहीं कि वो स्वर्ग पहुंचे, वहां की अप्सराएं अर्जुन के मनुष्य देह को देखकर लालायित हुई, क्योंकि अर्जुन का तेज और अर्जुन की भक्ति इतनी थी। अब देखिए स्वर्ग में वहां पर मनुष्यों को बहुत ऊंची नजरों से नहीं देखा जाता, किनको, हमको, हम मनुष्यों को, क्योंकि जब मनुष्य पुण्य वगैरह करने के पश्चात उन्हें एक स्वर्गीय देह मिलता है, देखिए द सेलेस्टियल बॉडी, और स्वर्ग में वहां पर जब कोई जो भी स्वर्गवासी हो, वहां का वासी, वो यदि कुछ गड़बड़ कर दे तो वहां का जो झगड़ा होता है, वो झगड़े में गाली गलौच में वो लोग कहते हैं मानव, मानव की तरह व्यवहार करता है। ये गाली है उधर, जैसे यहां पर कोई बोलते थे कुत्ता, तो वो गाली हो जाती ना, क्योंकि मुझे कुत्ता वाला, कुत्ते की औलाद ऐसे भी बोल देते। मेरा एक दोस्त था, वो अपने उसके घर के पालतू कुत्ते को गाली दिया करता, साले कुत्ते की औलाद। तो मैंने कहा ये गाली थोड़ी हुई है, तो कुत्ते की तो औलाद है वो, तो सुनने में कैसा लगता है कुत्ते की औलाद। तो वहां पर स्वर्ग में तो मनुष्य की औलाद, तो बहुत बड़ी गाली है उधर, सहन नहीं होती उनको, मनुष्य की औलाद बोलता है। तो अर्जुन मनुष्य देह में स्वर्ग पहुंचे और वहां पर उनका वेलकम हुआ। ऐसा नहीं कि वहां पर सब लोग देख रहे थे मनुष्य आया है, एक मनुष्य आया है, नहीं, वहां पर यहां तक कि जो उनके इंद्र के पूरे लिस्ट की सबसे बड़ी अप्सरा उर्वशी, वो आकर्षित हो गए अर्जुन से, अर्जुन के मनुष्य देह से। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि भाई तुम क्यों शंका कर रहे हो, तुम एक बार जाके आ चुके हो, यू आर स्वर्ग रिटर्न, डोंट वरी। बोलते ना अमेरिकन रिटर्न, यू आर स्वर्ग रिटर्न। फिर नारद मुनि, इनका उदाहरण है कि नारद मुनि को तो यूनिवर्सल वीजा मिला हुआ है, कहीं पर भी वो पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन, वो कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं। उनको इस प्रकार का शरीर मिला है कि उनको ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन बोलते हैं, ही कैन एंटर एनीवेयर एंड एवरीवेयर। और भगवान ये सब उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये सब मेरे भक्त इसलिए ये सक्षम हुए स्वर्ग एवं वैकुंठ में एंट्री करने के लिए। तो भगवान धीरे धीरे अर्जुन को ये संकेत दे रहे हैं कि ये जो तुम स्वधर्म का पालन करोगे, ये मेरे निर्देशन में करोगे, ये मेरी भक्ति तुम्हारी होगी, इसलिए तुम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। लेकिन फिर इसी भगवद गीता में भगवान ने स्वर्ग प्राप्ति की सराहना आगे चलकर नहीं की है। जैसे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम, इसी भगवद गीता में भगवान नवे अध्याय में क्या कहे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंधि, कि चाहे कोई स्वर्ग भी पहुंच जाए, जैसे ही उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो वो लोग करते क्या है कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि उसने 90% पुण्य अर्जित किया है, तो उसका जितना टाइम ड्यूरेशन वो सब कैलकुलेटेड रहता है, जैसे ही वो एंट्री किया उसका मीटर डाउन, बस उसके पुण्य का मीटर डाउन चालू हो जाता है, कि जो भी वो वहां पर भोगेगा, सोमरस पिएगा या आराम करेगा, सांस भी लेगा, तो उसके पुण्य कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं वहां पर। और जैसे ही जो वहां के रिकॉर्ड के अनुसार देखा गया कि अब बस 1-2% इसका पुण्य बाकी है स्वर्ग में रहने का, तो उसे धीरे धीरे वो सोमरस हाथ में दे देते हैं एक प्याला, और पिला पिला के उसको स्वर्ग के बाउंड्री पे लेके जाते हैं, बाउंड्री पे, और वहां से धक्का मारते हैं। जैसे ही उसका हो गया, हाँ पूरा पुण्य खत्म, चलो धक्का मारो इसे, तो वहां से धक्का मारते हैं, तो सर के बल नीचे गिरता है वो। और ये सब शास्त्रों में बताया गया है कि फिर वो रुदन करता है कि अरे मुझे ऐसे ही बिना नोटिस के फेंक दिया गया नीचे, तो रुदन करता है, तो रोते हुए उसका आत्मा वो आंसुओं के द्वारा वो बारिश में मिलके इस पृथ्वी की भूमि में जाता है, और फिर किसी फसल में फसल की तरह उगता है, फिर वहां से शुरू होती है फिर से उसके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वो कोई वृक्ष के रूप में या इसके रूप में, और धीरे धीरे फिर वापस से मनुष्य जीवन में आता है। मनुष्य जीवन में आके फिर से यदि वही कर्मकांड या पुण्य में रख जाए तो फिर से वही चलेगा, ऊपर पहुंचेगा, वहां पे सब कुछ उसे मिलेगा और फिर बाउंड्री पे। तो मानो अर्जुन पूछे कि आप ही आगे चलकर नौवें अध्याय में बोलने वाले क्षीण पुण्य मर्त्य, फिर से या तो आना ही है मुझे यहां पे, आप बोल रहे अभी जाऊंगा मैं स्वर्ग, तो फिर से तो आना ही है। तो भगवान इस श्लोक में स्वर्ग के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रथम अध्याय में अर्जुन नर्क के बारे में बोल रहे थे, तो नर्क का एग्जैक्ट ऑपोजिट स्वर्ग हुआ ना। तो भगवान यहां पर एक परम सत्य स्थापित नहीं कर रहे, भगवान ये बता रहे हैं कि अरे तुम मेरी भक्ति भी नहीं करो, तुम कुछ भी मेरे बारे में न करो, केवल इस रणभूमि में तुम मर जाओ खड़े ऐसे, तुम्हें कोई मार दे अभी, फिर भी तुम स्वर्ग जाओगे तो सोचो तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो क्या नहीं मिलेगा तुम्हें। यह भगवान का उद्देश्य है यहां पर बताने का। इसे कहते हैं कैमुत्य न्याय, संस्कृत में कैमुत्य न्याय होता है कि यदि इतना सा करने से तुम्हें इतना मिल रहा है तो सोचो इतना करोगे तो कितना मिलेगा, है ना, उसे कहते हैं कैमुत्य न्याय। जैसे कि कोई यदि भारत में वो यदि 1 करोड़ कमा रहा है तो और कहा जाए कि अमेरिका में भी तुम्हें $1 करोड़ मिलेगा पर एनम, तो सोचिए यदि यहां पर 1 करोड़ तो वहां का 1 करोड़ कितना होगा, x45 जो भी है आजकल रेट चल रहा है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि कुछ भी ना करो अर्जुन, निहत्ते खड़े मर जाओ फिर भी तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है, तो सोचो कि तुम यदि मेरे आदेशों का पालन करके धर्म की स्थापना करोगे तो तुम्हारे लिए मैं क्या कुछ नहीं दूंगा धरोवर में। तो ये भगवान बता रहे हैं। अब भगवान कहते हैं सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस श्लोक में भगवान कहे कि ऐसा धर्म युद्ध जो कि इन क्षत्रियों के लिए भाग्यशाली ये ठहरेगा। तो अब प्रथम अध्याय में इस श्लोक में 36वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। इस श्लोक में अर्जुन वो भगवान से कहते हैं हे माधव, मैं अपने स्वजनों को मारूंगा उसमें किसका सुख, कहां सुख, क्या उनको सुख मिलेगा, क्या मुझे सुख मिलेगा। स्वजनम हत्वा, तो अर्जुन सुख की बात कर रहे थे तो भगवान को याद था कि प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन सुख की चिंता कर रहे थे कि सुख मिलेगा या नहीं, या कौन से पार्टी को सुख मिलेगा इस युद्ध में। सोचिए भगवान की मेमोरी देखो, वो वर्ड याद है, इसलिए आज के श्लोक में भी भगवान ने क्या सुखी ना वर्ड यूज किया, याद है आज का श्लोक कम से कम। सुखिन क्षत्रिया पार्थ, तो आज के श्लोक में भगवान ने यह कहा सुखिन क्षत्रिया पार्थ। अब देखिए जो प्रथम अध्याय का 36वां श्लोक हमने अभी अभी देखा उसमें अर्जुन ने कहा था श्याम माधव, माधव भगवान को माधव पुकारा अर्जुन ने। माधव का अर्थ क्या है, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति माधव, लक्ष्मी मैया के जो पति हैं धव वो है माधव। तो लक्ष्मी कौन है, जितने सारे भाग्य लक्ष्मी धन लक्ष्मी कितने सारी लक्ष्मियां होती ना, तो उन सारी लक्ष्मियों के पति ये माधव। तो अर्जुन ने देखिए भगवान को माधव पुकारा कि आपका नाम है माधव, तो आप जो कि सारी लक्ष्मियों के पति हो तो मेरा भी भाग्य उजागर करो ना। तो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि हां मैं तुम्हारा, केवल तुम्हारा नहीं, जितने सारे क्षत्रिय एकत्रित हुए सबके सुख सबके शुभ और लाभ के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, गांडी उठाओ मारो। तुमने मुझे माधव पुकारा था ना, मैं तुम्हें पार्थ पुकार रहा हूं। आज भगवान यहां पर अर्जुन को पार्थ पुकार रहे हैं कि तुम एक क्षत्राणी के पुत्र हो, प्रथा के पुत्र हो, तो शुभ और लाभ तुम्हारा और ये सारे क्षत्रियों का छिपा है इस धर्म युद्ध को लड़ने में। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाग्य और सुख ये दोनों इसमें छिपा हुआ। श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता को बंगाली में सारांश के रूप में गीतार गान करके श्री प्रभुपाद ने लिखा था, बंगाली में गीतार गान। तो बहुत सुंदर आज के श्लोक की व्याख्या श्री प्रभुपाद ने की। श्री प्रभुपाद ने जो स्वधर्म भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं उस स्वधर्म को लेते हुए श्री प्रभुपाद कहे कि महाभारत का युद्ध कोई साधारण कोई भाई भाई में झगड़ा होता है वैसा कोई झगड़ा नहीं था। ये जैसे लोग अक्सर बोल देते हैं ना, अरे क्यों महाभारत लगा रखा है घर में, है ना। तो घर में जब कोई तूतू मैं हो जाती है तो उसको लोग महाभारत का नाम दे देते हैं, लेकिन महाभारत का जो युद्ध यदि हम उसका विश्लेषण कर देखें तो प्रभुपाद बताते हैं कि महाभारत का युद्ध वो एक यज्ञ था। वो केवल ये नहीं कि दुर्योधन ऐसा क्यों बोला मेरे, ऐसा क्यों किया, वो एक यज्ञ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इट वॉज अ सैक्रिफाइस जस्ट लाइक एनी अदर वैदिक सैक्रिफाइस। और कुरुक्षेत्र की रणभूमि यज्ञ कुंड, सोचे कितना बड़ा यज्ञ था ये, कि पूरी कुरुक्षेत्र की रणभूमि वो यज्ञ कुंड बनी हुई थी और अर्जुन पुरोहित, अर्जुन को भगवान ने वहां पर पुरोहित के रूप में नियुक्त किया हुआ था। तो यदि अर्जुन पुरोहित हुए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि यज्ञ कुंड, महाभारत का युद्ध ये यज्ञ, तो सोचिए अब आहुति अर्जुन ये पुरोहित किसकी देंगे। कुरुसेना स्वाहा, कुरुसेना एक एक कर अर्जुन स्वाहा। तो जब आहुति होती है तो किसका उद्धार होता है, वो जो पदार्थ जिसकी आहुति हुई उसका तो उद्धार हुआ ही ना, है कि नहीं, उसका तो उद्धार निश्चित है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद इसकी व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि ये कुरु सेना की जो तुम आहुति करोगे अपने बाणों से, जैसे वो पुरोहित होता है ना वो चम्मच से घी की आहुति करता है, तो वो जो चम्मच है वो अर्जुन के बाण। तो एक एक दुर्योधन को लेके उठाया यज्ञ कुंड में, चल तू भी आहुति स्वाहा। अब यज्ञ में पुरोहित, यज्ञ में आहुतियां, यज्ञ कुंड, यज्ञ की विधि, ये सब कुछ ठीक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ को सिद्ध करने के लिए यज्ञेश्वर, यज्ञेश्वर होने चाहिए ना, जो इन आहुतियों को स्वीकार करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा यज्ञ शुरू करने से पहले मैं यज्ञेश्वर आ गया। किसी भी यज्ञ में जब आहुतियां दी जाती हैं, आहुतियां ठीक से दी, विधि विधान ठीक से हुआ, तब जाकर अंत में यज्ञेश्वर आकर स्वीकार करते हैं। यहां पर भगवान कहते हैं कि मैं पहले ही आ चुका हूं। तो देखिए ये महाभारत का युद्ध ऐसा यज्ञ जिसमें यज्ञेश्वर स्वयं आकर कह रहे हैं अर्जुन को, ये आहुतियां दो इसको, इसमें डालो ये आहुतियां। तो अर्जुन को क्यों संकोच करने की आवश्यकता थी, जब साक्षात भगवान जो यज्ञेश्वर हैं वो आकर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तुलना एक समदर्शी निष्पक्ष माता। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ दुर्योधन के प्रति भी वही कृपा दृष्टि अपनी रख रहे थे कि अर्जुन गीता की भाषा समझ के उद्धार अपना कराएगा और दुर्योधन जो है वो दूसरी भाषा, अर्जुन शस्त्र शास्त्र के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, दुर्योधन शस्त्र के द्वारा। तो जैसे एक माता होती है उसके बहुत से बच्चे होते हैं और अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग टेम्परामेंट के होते हैं, तो माता उनको उसी हिसाब से उनका व्यवहार करती है। इसलिए ये बहुत जानना आवश्यक है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे। इस भौतिक संसार में, हाँ भौतिक संसार में भी कई बार देखा जाता है कि एक माता जब किसी का भेदभाव उसके अंदर आ जाता है कि हाँ ये मेरी देखभाल अच्छा करता तो मैं बुढ़ापे में इसके साथ रहूंगी क्योंकि ये मेरी देखभाल अच्छे से कर रहा है। परंतु माता भगवान श्री कृष्ण जब माता के रूप में, इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा, पिता हम अस्य जगता माता धाता पितामह, मैं सब कुछ हूं। केवल माता नहीं, भगवान कहते हैं मैं पिता भी हूं, मैं माता भी हूं, पिता महा सब कुछ। इसलिए यहां पर भगवान की जो कृपा दिख रही है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इनका उद्धार करो, मुझे इनको मारने में कोई सुख नहीं मिल रहा है और कोई चारा नहीं छोड़ा गया इनके उद्धार के लिए दुर्योधन ने, केवल यही एक रास्ता कि धर्म युद्ध में ये मरे तो स्वर्ग की इन्हें प्राप्ति हो, इनका उद्धार हो। और यहां पर तो हालांकि भगवान की नम्रता है कि भगवान केवल स्वर्ग का प्रलोभन दे रहे हैं या कह रहे हैं कि इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन अंततः श्रीमद् भागवत के अनुसार बताया गया है कि ये सारे योद्धा मुक्ति प्राप्त किए क्योंकि इनका अंत हुआ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखते हुए। तो क्योंकि भगवान के मुखारविंद को देखते हुए इन्होंने अपना शरीर त्यागा तो स्वर्ग से भी ऊंचा इन्हें भगवत धाम, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते ये सुना था कि क्यों बहुत से योद्धा कौरव सेना में गए, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि हमारी मुक्ति ये पांडु की सेना से ज्यादा और जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि हम ऑपोजिट है ना भगवान के, तो हम ज्यादा अच्छी से देख देख के मरेंगे उनको। तो जब मरेंगे तो फिर मुक्ति, केवल स्वर्ग प्राप्ति नहीं बल्कि मुक्ति। इसलिए आज का जो श्लोक है इसमें श्रील प्रभुपाद की जो बहुत सुंदर व्याख्या जिसमें महाभारत युद्ध की तुलना एक यज्ञ से की गई है, कोई ये खून खराबा ही नहीं, वो एक यज्ञ है और यज्ञ में जो भी उपस्थित सबका उद्धार होता है, यजमान जो पुरोहित है और अंततः यज्ञेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और अगले श्लोक में अब भगवान अर्जुन को कहेंगे कि अर्जुन तुम चिंता कर रहे थे कि तुम मारोगे तो तुम नरक जाओगे, अगले श्लोक में भगवान अब अर्जुन को कहने वाले तुम यदि नहीं मारोगे तो नरक जाओ। और डरावना श्लोक है। आज के श्लोक में तो कहा कि मारने से तुम स्वर्ग जाओगे और अर्जुन को थोड़ा और अब अगले श्लोक में डराने वाले हैं कि तुम नहीं मारोगे तो नरक जाओगे, तो तुम्हारे लिए कोई अब विकल्प नहीं रहा। तो बहुत ही सुंदर अगला श्लोक जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? Announcements.